जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा
प्रभुपाद की जय राधा दामोदर भगवान की जय सुधा दामोदर की जय कार्तिक मंत की जय शिल प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते नमो भगवते वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नाम्ने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सबका स्वागत है। सूर्यकला माता जी घर पे इस कार्तिक महीने में इस कार्तिक दीपदान के उत्सव में तो हम पिछले कई दिनों से हम इस सिद्धि विनायक सोसाइटी के अलग अलग घरों में दीपदान उत्सव का प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण यह उत्सव है दीपदान का, जिससे भगवान परम प्रसन्न होते हैं दामोदर भगवान। और ये जो कार्तिक महीना है, कार्तिक महीना ऐसे ही परम पवित्र है, और कार्तिक महीने में अगर हम इस प्रकार के भगवत कार्य अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होते हैं, और जो भी कार्य करते हैं उसका 1000 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होता है इस महीने में अगर करते हैं। तो हमने क्रमानुसार हमने क्या किया था कि इस अष्टकम को, जो कि सत्यव्रत मुनि के द्वारा लिखा हुआ यह अष्टकम है, इसी को चर्चा करते हुए हम इसका गायन करते हुए और साथ साथ में इसको एक एक श्लोक को समझते हुए हम कुछ लीलाओं को हम कर रहे हैं।
सबको दे दो, सबको दे दीजिए।
तो क्रमानुसार ही हमने अभी तक दामोदर अष्टकम के 2 श्लोकों के ऊपर, प्रथम और द्वितीय श्लोकों के ऊपर हमने कुछ लीला कथाओं को करते हुए उसके ऊपर विचार विमर्श किया। तो हम आगे अग्रसर होते हुए इस दामोदर अष्टकम के तृतीय श्लोक को थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या बताते हैं सत्यव्रत मुनि। सत्यव्रत मुनि ये लिखते समय देख रहे हैं कि भगवान की लीलाओं को देख रहे हैं, वो देखते हुए इतना प्रभावित हुए सत्यव्रत मुनि कि इस प्रकार से अष्टकम की रचना किया उन्होंने। हमने देखा पिछले सत्र में कि किस प्रकार से भगवान को सत्यव्रत मुनि सबसे पहले प्रणाम करते हैं। हमने उस दिन बताया कि किस प्रकार से प्रणाम करने मात्र से, ये प्रणाम में इतनी शक्ति है कि प्रणाम करने मात्र से यह जो संसार का बड़े से बड़े कठिन से कठिन कार्य भी हम उसको बड़े आसानी से कर लेते हैं। दिन का शुरुआत, चाहे वो दिन का शुरुआत हो, चाहे साल का शुरुआत हो, चाहे महीने का शुरुआत हो, दिन का शुरुआत ही हमको 2 चीजों से करना चाहिए एक्चुअली। प्रथम इस बात को भागवत में सुखदेव गोस्वामी पूरी भागवत करने के बाद, पूरी भागवत कथा संपन्न करने के बाद, भागवत लिखने के पश्चात अंत में भागवत का कंक्लूजन देते हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान संजय लास्ट में भगवद गीता का अंतिम में क्या करता है, कंक्लूजन देता है भगवद गीता का। क्या कहता है संजय, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नितिर्म तिर्ममा। जहाँ पे भगवान कृष्ण और अर्जुन है निश्चित रूप से वहाँ पे केवल तत्र श्री विजयो भूत, वहां पे केवल विजय ही विजय, विजय की ही प्राप्ति होगा। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी श्रीमद भागवत का इतना महान, जिसको भागवत महापुराण के नाम से जाना जाता है, उस पुराण में के अंत में कंक्लूजन देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रमाणो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। पूरी भागवत को समझे या ना समझे, लेकिन अंत में इस सार को समझ के हमको अपने जीवन के कार्य को करना चाहिए। क्या बताते हैं कि सबसे प्रथम कार्य क्या बताते हैं कि नाम का कीर्तन करो, नाम का जप करो। दिन का दिनचर्या प्रारंभ करने से पहले, दिन का शुरुआत हो या महीने की शुरुआत हो या साल का शुरुआत हो, दिन का शुरुआत हो व्यक्ति के जीवन में किससे होना चाहिए? नाम का जप करने से होना चाहिए, भगवान के नाम का, नाम के जप करने से होना चाहिए। और दूसरा, और भगवान को तम नमामि हरि परम, भगवान को प्रणाम करने से होना चाहिए। ये दो कार्य से दिन का प्रारंभ होना चाहिए व्यक्ति का। सर्वप्रथम क्या, भगवान का नाम जप और भगवान को प्रणाम करना, ये दो चीज से व्यक्ति का दिन का प्रारंभ होना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कंक्लूजन देते भागवत का। तो इस प्रकार से हमने श्रवण करते आए कि किस प्रकार से शत्रुपद मुनि ने सुंदर ये अष्टकम की जो रचना किया, तो हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से भगवान क्या रस्सी से बंध गए, दामोदर रस्सी से बंध गए, मैया ने उनको उखल से बांध दिया, और किस प्रकार से भगवान अभी रोने लगे, छोटे से बालक बाल लीला भगवान की, भगवान रोने लगे, रुदंतम मोर नेत्र युग्मम रिजंतम। इस प्रकार से भगवान अपने हाथों से अपने रोते हुए वह आंख को मसल रहे हैं, और वर्णन है कि उनके आंखों में जो काजल है पूरा फैल गया है। तो इस प्रकार से हमने यह सुना, वास्तव में जब ये कृष्ण की ये जो मधुर लीलाएं हैं, भगवान की बाल लीलाएं ना, वास्तव में व्यक्ति को बहुत मोहित करने वाली ये लीलाएं हैं, परम आनंद की प्राप्ति कराने वाली ये लीलाएं हैं। और विशेष करके उसमें से भी ये जो दामोदर लीला की विशेषता बहुत है, ये जो हम पूरे महीने कर रहे हैं ना, भगवान के दामोदर लीला को, दामोदर जी को, यशोदा दामोदर को जो दीप दान का ये प्रोग्राम कर रहे हैं ना, वास्तव में क्यों कर रहे हैं, रोज क्यों इसी लीला का स्मरण कर रहे हैं, इन्हीं को क्यों देख रहे हैं रोज, क्योंकि वास्तव में ये करने से भगवान परम प्रसन्न होते हैं। देखिए इस लीला में क्या हुआ है, यशोदा मैया ने क्या किया, भगवान को बांध दिया। अभी सोचिए, ओ भगवान जिनको कोई बांध नहीं सकता है, लेकिन मैया ने क्या किया, उस भगवान को बांध दिया। और हमारे जीवन में भी हम यही करते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। किस लिए पूजा करते हैं? क्योंकि भगवान हमारे पास आए, हम उनको बांधे, उनको प्रेम की रस्सी से बांधे, इस प्रकार के बुलाने के लिए हम दिन का कार्यक्रम करते हैं। जो भी भक्ति भजन करते हैं हर व्यक्ति, केवल भगवान को बांधने के लिए, भगवान को बुलाने के लिए। लेकिन भगवान इतना आसानी से पास में नहीं आते हैं, इतना आसानी से नहीं आते पास में। तो हमारा यही प्रयास है कि किस प्रकार से हम इस लीला को बार बार श्रवण करके, बार बार ध्यान करके, श्रवण करके, और कृपा के भाजन बने, ताकि हम भी भगवान को प्राप्त कर सके, उनकी कृपा को प्राप्त कर सके या उनको बांध सके। इसलिए ये लीला को पूरा महीने जो भक्त, जो वैष्णव हैं, वो गायन करते ही रहते, बार बार गायन करते रहते हैं, बार बार करते रहते उस कृपा को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान की देखिए अनंत लीलाएं हैं। बाल अवस्था में भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं किया। आपको पता है जब कृष्ण जब चलना शुरू किया, तो सबसे पहला क्या कार्य किया उन्होंने, भगवान कृष्ण ने बचपन में जब चलना प्रारंभ किए, तो सबसे प्रथम कार्य क्या किए, चोरी करना प्रारंभ किया। प्रथम कार्य चोरी करना, माखन की चोरी करना भगवान प्रारंभ किए, प्रथम कार्य उनका। फिर भी माखन चोर के नाम से विख्यात है भगवान, यह है उनका पूर्ण यश। व्यक्ति पूर्ण यश को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको अच्छे अच्छे कार्य करना पड़ता है। एक व्यक्ति यश को प्राप्त करना अगर चाहता है, तो उसको बड़े बड़े समाज में अच्छे कार्य करना पड़ता है, तभी यश की प्राप्ति होती है। इतना आसान नहीं है। लेकिन भगवान पूर्ण यशस्वी इसलिए बताए गए है कि वो गलत कार्य भी करते हैं, चोरी भी करते हैं ना, पूरा संसार उनका गायन करता है। विचार करिए, ये है भगवान, उनके हर एक कार्यकलाप जो है दिव्य है, और उसके गायन जो है बड़े बड़े महात्मा साधु भी करते रहते हैं। इससे पता चलता है कि भगवान की महानता क्या है। हम गलत कार्य करें तो मारे जाएंगे, भगवान कार्य किए चोरी का, लेकिन क्या किया, उसका पूजन हो रहा है। माखन चोर के नाम से विख्यात है, बड़े बड़े भजन निकलते हैं इस माखन चोर लीला पे, माखन है बाल लीला के ऊपर। तो भगवान ने प्रथम क्या किया, माखन को चुराना शुरू किया। जब चलना शुरू किया, तो उन्होंने क्या किया, माखन को चुराना शुरू किया। तो एक बार भगवान उस नंद भवन में 84 खंबा नंद भवन में भगवान एक बार माखन को अपने ही घर में से माखन को चोरी किया है? अपने ही घर में से चोरी किया, क्योंकि मैया बड़े संभाल के रखती थी कि बिगाड़े ना करे, देती थी खाने के लिए भरपूर मात्रा में, लेकिन बालक है कभी भी बिगाड़ देगा ऐसा करके संभाल के रखती थी। तो क्या किया कृष्ण ने, अपने ही घर से माखन को चोरी करके अपने आंगन में, वो इधर छुप के जा रहे हैं कि मैया देख न ले, छुप के जा रहे हैं, हाथ में माखन का लोंदा लिए हुए और जा रहे हैं, तभी सामने एक बालक, एक और बालक दिखा, तो तुरंत डर गए क्योंकि चोरी किए हुए हैं, तो किसी ने देख लिया, अभी बालक ने एक और बालक ने देख लिया कृष्ण को, छोटे से कृष्ण, 3 साल के बालक, 3, 3.5, 4 साल के ही बालक थे वो। तो वो बालक ने देखा, जैसे ही तुरंत ये स्तंभित खड़े हो गए और तुरंत बोले कि मुंह पे उंगली रहा है कि बोलना मत, आवाज मत करना, आवाज मत करना बिल्कुल, और किसी को बताना मत। और कृष्ण छोटे से बालक, इमेजिन करिए कृष्ण किस प्रकार से इस लीला को संपन्न कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, देखिए एक बालक के रूप में, छोटा से बालक, एकदम मुंह पे उंगली रख रहे हैं, एकदम करके आवाज कर रहे हैं कि किसी को मत बताना तुम कि मैंने चोरी किया हूँ। एक काम करो, हम क्या करते हैं, आधा आधा हिस्सा बांट लेते हैं, माखन आधा तुम ले लो और आधा मैं ले लेता हूँ, लेकिन किसी को मत बताना, और विशेष करके मैया का तो बिल्कुल मत बताना, बिल्कुल मत बताना। तो बालक खड़ा ही रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो तुरंत ही तो कृष्ण ने सोचा कि बोल नहीं रहा है मतलब इसको और कुछ चाहिए, इसको और कुछ चाहिए, तो एक काम करो तुम पूरा माखन रख लो, लेकिन बताना मत किसी को, पूरा रख लो माखन। फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है, तो कृष्ण एक एक करके, एक एक करके उसको मना रहे हो, कुछ नहीं बोल रहा है, तो कृष्ण लगे गाली देने, इसका मतलब तुम मैया को बताएगा, जा बता दे मैया को, कौन मेरा क्या दे, बिगाड़ लेता देखता हूं, जा बता दे। वो और कोई नहीं, उस एक खंभे में एक कांच लगा हुआ था, वो कृष्ण अपने ही प्रतिबिंब को देख के इस प्रकार की बात कर रहे थे, अपने ही प्रतिबिंब को देखकर इस प्रकार की बात कर रहे थे। और सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है पता है, मैया एक खंभे के पास खड़े होकर देख रही थी खंभे के पास मैया खड़े होकर देख रही थी और परम आनंद की प्राप्ति कर रही थी मैया। तो इस प्रकार से कृष्ण जब चलना शुरू किए तो क्या किया उन्होंने, प्रथम चोरी, माखन चोरी की लीला प्रारंभ किया उन्होंने। कितनी मधुर लीला है, मन को मोहित करने वाली लीला है। इस प्रकार से गोपियां क्या करती थी, ब्रज की अन्य गोपियां जो थी, केवल उन्होंने अपने ही घर में तक शुरू किया, अपने घर से, लेकिन अपने घर से शुरू किया था, धीरे धीरे बाजू वाले के घर से, धीरे धीरे ब्रज में अलग अलग घरों में जाने लगे। तो क्या करती थी, ब्रज की जो गोपियां थी ना, वो गोपियां मैया के पास कंप्लेन लेके आती थी, ब्रज की गोपियां मैया के पास कंप्लेन लेकर आती, और मैया कभी विश्वास ही नहीं करती। मैया इसलिए, यशोदा मैया विश्वास नहीं करती कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, अरे मेरे घर में 9-9 लाख गायें हैं, मेरे घर में गायों की कमी है क्या, मेरे घर में दूध दही की कमी है क्या, मक्खन की कमी है क्या, तुम्हारे घर में चोरी करने जाएगा। गोपियां कंप्लेन करते तो मैया यशोदा बिल्कुल मानती नहीं थी कि पॉसिबल ही नहीं है, मेरे घर में इतना भरा हुआ पूरा है और तुम्हारे घर में क्यों चोरी करने जाएगा। तो गोपियों ने सोचा कि चलो एक काम करते, एक दिन इस बालक को, कृष्ण को हम पकड़ के रंगे हाथ पकड़ेंगे और मैया के पास लेके चलेंगे, तभी उसको विश्वास होगा। तो इस समय गोपियों ने प्लान बनाया और कृष्ण को मक्खन चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। अभी कृष्ण को पकड़ा, पकड़ के हाथ में एक गोपी खींच के लेके जाने लगे कि चल अभी तुम्हारे मैया के पास लेके जाते हूँ। कृष्ण अपने आप को खींच रहे, नहीं 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 मैया के पास मत लेके चलो, मैंने कल से नहीं आऊंगा, नहीं चोरी करूंगा, इस प्रकार का बोल रहे, लेकिन अभी गोपी कहाँ सुनने वाली, उसके माइंड में तो यही है कि यशोदा को लेके जाके दिखाना तेरा लाला जो है ना मक्खन चोरी करता है, हम लोग को परेशान करता है। गोपी ने पकड़ लिया कृष्ण को और खींच के लेके जाने लगी, और खींच के लेके जाते जाते रास्ते में एक चौराहे पे, एक जंक्शन पे क्या हुआ, उस गोपी के ससुर जी दिखाई दिए, उस गोपी के ससुर जी दिखाई दिए। तभी मर्यादित स्त्रियां क्या ससुर को देखते हैं, क्या करते हैं अपने घूंघट कर लेती हैं, आज तो ये प्रथा चली गई तो घूंघट को कर लेती है। तुरंत ही उस गोपी ने क्या किया, कृष्ण को पकड़ी हुई हाथ से खींच के लेके जा रही है, ससुर जी दिखाई दिए, शर्मा के तुरंत क्या किया, एक सेकंड के लिए छोड़ा और अपने घुघुंड को नीचे किया और वापस पकड़ लिया। उसी क्षण क्या हुआ कि कृष्ण ने उस गोपी के बच्चे को उसके हाथ में दे दिया है, अभी तो घूंघट कर लिया, उस बच्चे को हाथ में दे दिया, उसके ही बच्चे को उसके हाथ में दे दिया और खुद चले गए। अभी वो खींच के लेके जा रहे, वो खींच रहा है, वो सुन कहा रहे, उसका धुन तो एक ही है क्योंकि लेके जाना है उसको, सुन कहा रहे, घसीट घसीट के लेके जा रही है और नंद भवन पहुंची और मैया का दरवाजा खटखटाई, है यशोदा रानी देख तेरे बालों को पकड़ के लाई हूं आज, आज खोल दरवाजा देख, तुमको विश्वास होगा कि आज रंगे हाथों इसको पकड़ाया हमने। जैसे ही मैया ने दरवाजा खोला, कृष्ण पीछे थे और मैया सामने दरवाजा खोली, एक गोपी ने देखा कि कृष्ण अंदर है, तो आश्चर्य हुई और तुरंत देखा, तुरंत देखा तो पता क्या चला, ये तो मेरा चिंटू है। कृष्ण ने पीछे से गुस्से से बोला कि ये तो ठीक है, इस बार तुम्हारे बालक को पकड़ा दिया तुम्हारे हाथ में, अगली बार ऐसा किया ना तेरे पति को हाथ में पकड़ा दूंगा। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है ना मधुर से मधुर लीलाएं करते थे, वो सोचिए कि क्या आनंद की अनुभूति करते होंगे वो गोपियां और मैया यशोदा रानी। तो इस प्रकार से कृष्ण इस सारे कंप्लेन को ना श्रीमद भागवत में सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं, बहुत सुंदर। मैं आज दोपहर में बॉम्बे में मेरा कथा था दोपहर में, तो मैं सारे लीलाओं को वर्णन कर रहा था आज, दामोदर लीला के ऊपर ही था प्रवचन, तो काफी सुंदर रहा है, मैं आप लोग को भेजूंगा, वो शायद एक दो दिन में आ जाएगा, वहाँ पे वो लोगों ने रिकॉर्ड भी किया हुआ है, 600-700 लोग बैठे हुए थे, काफी डिओटीज थे वहाँ पे। तो श्रीमद भागवत में सुखदेव गोस्वामी इन बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं और किस प्रकार से ये जो गोपियां कंप्लेन लेके आती थी मैया के पास, और कभी भी गोपियां कंप्लेन लेके आती थी मैया के पास तो मैया कभी सुनती नहीं थी, सुनती नहीं थी। तो एक बार सारी गोपियां एकत्रित हुई, सब गोपियां एकत्रित होकर मैया के पास गई नंद भवन में और बोली, यशोदा रानी तुम्हारा ये जो बालक है ना, उनको हमारा जीना हराम कर दिया है, ये छोटा सा बालक है, कितना छोटा से है लेकिन हम लोग का जीना नाक में दम करके रख दिया है, एकदम जीना हराम कर दिया है। तो मैया यशोदा पूछती, भाई क्या किया मेरे बालक ने, क्या इस प्रकार से तुम लोग बोल रहे हो जीना हराम कर दिया, क्या किया मेरे बालक ने। तो गोपियां बोलते हैं कि क्या नहीं किया वो पूछो मैया, क्या नहीं किया। अरे मैया क्या क्या बताऊं, ये सुबह क्या करता है, समय से पहले मेरे बछड़ों को छोड़ देता है, दूध निकालने का समय हुआ नहीं है लेकिन बछड़ों को छोड़ देता है, जाके पी जाते हैं और हम दूध निकालने जाते तो कुछ मिलता ही नहीं है, बछड़ों को छोड़ देता। तो मैया बोलते, तुमको डांटना चाहिए, फिर डांटते कि नहीं हो, डांटना चाहिए तुमको। तो गोपियां कहते कि मैया हम डांटते हैं इसको, डांटते हैं तो ये हमको बोलता है कि तुम लोग कसाई हो, ये बछड़ा जो है देखो दूध के बिना मरे जा रहा है और तुम लोग पूरा दूध खुद निकाल लेते हो, इस बछड़े को पिलाते नहीं हो, तुम लोग कसाई का काम करते हो, इस प्रकार से डांटते हुए चिल्लाता है हम लोग को। और क्या बताऊं मैया, गोपियां कहती हैं कि क्या बताऊं मैया, जैसे ही हम उस बछड़े को बांधने जाते हैं ये अपने मित्रों के साथ घर में घुस जाता है, अभी घर में घुसा। तो मैया बोलते कि तुम्हारे घर में क्यों घुसेगा, इतना बड़ा हमारा महल है, तुम्हारे घर में क्यों घुसेगा। मैया घुस जाता है घर में, क्या करता है घर में घुस के, तो घर में घुस के हमारा जो मटकी में रखा हुआ माखन इत्यादि जो कुछ है उसको तोड़फोड़ करता है और अपने मित्र बालकों में बांटता है, खाता और चला जाता है। तो मैया कहती है, काम करो कि तुम क्या करो, मटके को ना अपना मक्खन दूध दही को बहुत ऊपर बांध दो, बहुत ऊपर बांध दो, पहले के समय में ऐसा होता था, ऊपर बांध के रखते थे। तो गोपियां बोली, ऊपर बांध दोगे तो वहां नहीं पहुंचेगा, ये तो छोटा से बालक है कहां पहुंचेगा वहां पे। तो गोपियां कहती कि मैया हमने ये भी कर लिया, हमने ऊपर बांधा लेकिन ये क्या करता है, अपने मित्रों को नीचे 10-12 लोग को खड़ा करता है, उसके ऊपर और 4-5 लोग को खड़ा करता है और उसके ऊपर और 2-3 लोग को खड़ा करता है और खुद सबसे ऊपर होकर जाकर उसको फोड़ डालता है, फोड़ डालता है, ये भी हमने कर लिया। मैया बोली, एक काम करो, तुम लोग अंधेरे में रखा करो इसको, जहां पे इसको दिखे ही ना। तो गोपियां कहती, मैया हमने ये भी कर लिया, अंधेरे में रख लिया लेकिन क्या करता है, तुमने जो इतना सुंदर सा आभूषण पहना है ना कृष्ण को, ये आभूषण इतने चमकते हैं उसके शरीर पे कि वो अंधेरा दूर हो जाता है और दिख जाता है उसको, और फिर पकड़ लेता है और फिर फोड़ देता है। तो मैया बोले कि काम करो कि इस प्रकार से मैया के पास ये लोग कंप्लेन इतना एक एक करते हैं, मैया सोल्यूशन बता रही है कि मेरा बालक ऐसा किया ही नहीं होगा, करता ही नहीं होगा, और एक एक बता रहे ठीक है ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन गोपियों ने तो सब कुछ कर लिया था। तो एक एक करके ये सारे वर्णन गोपियां कर रही है और मैया उसका जवाब दे रही है, और अंत में गोपी कहती है कि मैया देख तेरा बालक बहुत छोटा से है, छोटा से बालक, छोटा से पेट उसका, वो खाए हमको कोई समस्या नहीं है, कितना खाएगा, चलो अपने मित्रों को भी खिलाता तो कोई बात नहीं है, मित्रों को भी खिलाता तो कोई भी कोई बात नहीं, हमारे ही सहेलियों के, हमारे ही ब्रजगोपियों के बेटे हैं सब, कितना खाएंगे। लेकिन ये क्या करता है, बिगाड़, खाता तो खाता है, खिलाता भी है, लेकिन बिगाड़ता और साथ साथ में बंदरों को खिलाता है, इतने सारे बंदर है और सबको बुला लेता है और वो बंदरों को बांटता रहता है। हम तो एकदम परेशान हो गए, कृष्ण बंदरों को माखन खिलाते थे, आज तो व्यक्ति को छाछ मिलना दुर्लभ हो गया है, लेकिन कृष्ण बंदरों को मक्खन खिलाया करते थे। वास्तव में जो बंदर थे ना, भगवान के लिए बहुत बड़ा कार्य किए थे। पिछले लीला में जब राम की लीला कर रहे थे भगवान, तो यही बंदर, अब विचार करिए कितना भगवान की लीला में सहयोग किए सारे बंदर। बस इसी को याद करते हुए भगवान कृष्ण रूप में आकर इन बंदरों को मक्खन, जोरों में मक्खन खिलाया, कि कितने मदद किए थे हमको इस पिछले लीला में। बहुत रीढ़ था, उसको रीढ़ से मुक्त हो रहा है आज भगवान, मक्खन खिला खिला के, लेकिन ठीक है उसको मक्खन खिला के रीढ़ से मुक्त हो रहा है, गोपियों के कितना तकलीफ हो रहा है, सारे उनके उनका उन वो मक्खन को बेचती थी तो वही उसी से उनका जीवन यापन चलता था, और उससे जो धन मिलता था तो उनका चूल्हा चलता था घर में, ये बिगड़ता था। तो इस प्रकार से बंदरों को मक्खन, आज भी ब्रजधाम वृंदावन में जाएंगे तो इसलिए बंदर आज भी भरपूर मात्रा में उधर, हम जाएंगे जब ही तो देखेंगे, सबसे पहला क्या करते हैं, चश्मा उतार लेते हैं। क्यों चश्मा उतारते पता है, देखिए भगवान ने तो मक्खन खिलाया, आजकल के लोग कुछ खिलाते नहीं बल्कि डांटते हैं चिल्लाते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ हमको केला खिलाए, एटलीस्ट केला खिलाए, एटलीस्ट सिंघदाना खिलाए, कुछ तो खिलाए, लेकिन लोग खिलाते नहीं, इसलिए क्या करते हैं, वो चश्मा ले लेते हैं। वो एक्चुअली चश्मा क्यों लेते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे धाम में आए हो ना, अपने रियल आंखों से भगवान का दर्शन करो, ढक्कन लगा के नहीं। रियल आंखों से दर्शन करो। ये इंगित करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं पता है, चप्पल को उठा ले जाते हैं। तीन चीज फेमस है, चश्मा, चप्पल और पर्स, ये तीन चीज तो 100% मार के लेके जाते हैं, खींच के लेके जाते हैं। मैं एक बार निधिवन में ऐसा ही कुछ भक्त लोग बैठे हुए थे, उस निधिवन में प्रवचन कर रहा था, कई घंटों तक प्रवचन किया निधिवन में मैंने, लगभग 6-7 घंटों तक बैठ के ऐसे ही भक्त बैठे थे, लीला कथा कर रहा था, क्योंकि वो बहुत गुई एकदम लीला है वहाँ पे भगवान की हुई है। निधिवन के अंदर सुंदर सा वन है जिसमें भगवान के अनंत अनंत रास लीला इत्यादि ये सारे चीजें हुआ है, तो मैं उसे वर्णन कर रहा था बैठ के, एक बंदर आया, बहुत बंदर है उस निधिवन में, इतने बंदर की सोचिए मत, पग पग के बंदर दिखेंगे, कभी पैर खींचेंगे, कभी कपड़े खींचेंगे, कभी एक खींचेंगे, लेकिन अभी इतना महान स्थलीय है तो सब लोग जाते हैं वहां पे। तो मैं कर रहा था प्रवचन, उस समय में आया वो पास में, इधर हाथ रखा और एक हाथ से मेरा जपमाला ऐसा निकाला गले से, और गले से निकाल कर लेके भागा, और उसमें ही मोबाइल रखा हुआ था, वो जपमाला लिया, फिर जपमाला को निकाल दिया उसने, माला को निकाल दिया और मोबाइल को, उसमें जो भी पेपर ये होता सबको फाड़ फूड़ के फेंक दिया। तो ये इंगित करते हैं, क्या इंगित करते हैं, चप्पल ले लेते हैं, चप्पल लेके भाग जाते हैं, चप्पल इसलिए लेते हैं ब्रज धाम वृंदावन में जहां पे भगवान ने नंगे पैर चले हैं, ऐसी धूली में क्यों चप्पल लेके आ रहे हो, पैदल चलो, इंगित करते हैं ब्रज के रज में जो है ना, पैदल चलो। पर्स लेके भागते क्यों लेके भागते हैं, कि यहाँ पे भौतिक संपत्ति है, भौतिक संपत्ति लाने की जरूरत नहीं है, इसलिए पर्स को लेके भाग जाते हैं। आध्यात्मिक जगत है, यहाँ पे आइए और केवल कृष्ण नाम में डूबे रहिए, इसलिए वहां पे राधे 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 ही चलता रहा। किसी को बुलाएंगे राधे राधे, रिक्शा वाला हरण नहीं मारेगा, राधे राधे, केवल मुख से राधे 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 ही चलता रहता है। तो इस प्रकार से परम आनंदमय धाम है, हम जब जाएंगे तो वहां पे इस धाम की महिमा को सुनेंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने बंदरों को भी मक्खन बहुत खिलाया, बंदरों को बहुत खिलाया। लेकिन अभी अंतिम में मैया कहती है कि एक काम करो, तुम लोग, तुम्हारा मैं प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, तुम ना घर में मक्खन रखो ही मत, इसको मालूम है कि घर में मक्खन है इसलिए सब घर में घुस जाते हैं, तो घर में मक्खन रखो ही मत। तो गोपियां कहती कि मैया हमने ये भी कर लिया, अब क्या, हमने जब ये घर में मक्खन नहीं रखा तो कृष्ण मित्रों के साथ अंदर गया, देखा कि मक्खन है, ढूंढा ढूंढा नहीं मिला तो आंगन में आया हमारे पास, और आंगन में आकर वो कहने लगा कि श्राप देने लगा। श्राप क्या देने लगा? दरिद्र वस्तु अस्मिन गृहे, तुम्हारे घर में दरिद्रता छा जाए। जिस घर में मेरे लिए खाने के लिए कुछ नहीं, उस घर में दरिद्रता छा जाए और तुम्हारे एक नहीं 21 पीढ़ी दरिद्रता को प्राप्त करे। इस प्रकार से श्राप देने लगता। मैया छोटा से बालक, निर्दोष बालक है, कहीं श्राप लग गया तो हम लोग का तो हो गया कल्याण, हमने ये भी कार्य कर लिया। तो मैया बोलते, एक बात बताती हूँ अंतिम, तुम लोग ये कर लेना, तुम लोग का सारी समस्या समाधान हो जाएगा। तो मैया कहती है कि एक काम करो, ये जब चोरी करने आता है ना, तो उस समय तुम लोग क्या करो, सामने से मक्खन दे दो इनको, और तुम लोग सामने से इनको जितना चाहिए उतना मक्खन दे दो, और उसका 10 गुना ज्यादा मक्खन मेरे घर से लेके जाना, तुम सामने से दो दो, समस्या ही खत्म। तो गोपियां कहती कि मैया हमने ये भी कर लिया, वो 2 बजे 2:30 बजे आने का टाइम होता है उसका, तो हम 2 बजे से ही आंगन में मक्खन लेकर बैठ जाते हैं। मक्खन लेके आएगा तो कम से कम फोड़ फाड़ नहीं करेगा, उसको खिला देते हैं हम इधर। हम 2 बजे से ही मक्खन लेके बैठ जाते हैं, और मक्खन लेके बैठ जाते हैं तो उसको जब देने लगते हैं तो लेता ही नहीं है, बोलता है भिखारी समझाए क्या हमको, भिखारी समझाए? मैं नंद महाराज राजा का लड़का हूं, मेरे घर में कुछ कमी है क्या, तुम लोग मुझको भूखा भिखारी समझाए? इस प्रकार की बातें करता है और कहता है कि देखो हमको फोकट का माल नहीं चाहिए। हाँ, हम फोकट का माल नहीं खाते हैं, हमको फोकट का कुछ नहीं चाहिए, हम मेहनत करके खाते हैं। अरे तू क्या मेहनत करा पता है सबको, फोकट का नहीं चाहिए मेहनत, तुमको पता है चोरी करने में कितना मेहनत है, कितना बड़ा रिस्क है? हम फोकट का नहीं खाते है, हमको भिखारी मत, नहीं खाना है तुम्हारा, वो दूसरे घर में चला जाता है लात मार के। भैया हमने ये भी कर लिया। तो इस प्रकार से कृष्ण की मधुर से मधुर लीलाएं उस ब्रजधाम वृंदावन में। ये तो मैं थोड़ा सा आप लोग को एक क्या बोलते हैं ट्रेलर के रूप में बता रहा हूँ, लेकिन कभी चलेंगे ब्रजधाम वृंदावन तो इसका आस्वादन अच्छे से करेंगे हम लोग। बहुत सुंदर सुंदर सी लीलाएं हुई कृष्ण का, बहुत ही सुंदर सुंदर सी लीलाएं। और यही सब सोच के एक्चुअली सदा मैया ने सोचा कि देखो अब तो कोई सोल्यूशन नहीं है, अभी क्या लगता है ना कि मेरे में ही प्रॉब्लम है, मेरे घर में अनेक दास दासियां हैं, वो मक्खन निकालते हैं, लेकिन गोपियां अपने हाथों से मक्खन निकालती है, और कृष्ण जो है भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, इसलिए तो प्रेम वश विदुर के घर पे जाकर केला का छिलका भी खाया। दुर्योधन ने 56 भोग बनाया, कृष्ण वहां पे गए ही नहीं क्योंकि वहां पे प्रेम नहीं था, और विदुरानी के घर पे आकर उस विदुरानी के प्रेम को स्वीकार किए, और विदुरानी जब उनको खिला रही थी ना तो केला छिलका, केला था घर में तो केले को छिल रही थी, और इतना प्रेम था भगवान को खिलाने के लिए कि केले को छिल रही है, छिलका मुख में डाल रही है, केला बाहर फेंक रही है, भगवान वो भी खाए। क्यों? क्योंकि प्रेम है वहां पे, विदुरानी के घर में जाकर प्रेम को स्वीकार किया भगवान ने। तो मैया ने सोचा कि भगवान तो भाव के भूखे है, प्रेम के भूखे है, और मैंने कभी भी मक्खन मैंने नहीं निकाला मेरे घर में, इसलिए मैं क्या करूंगी, मैं स्वयं मक्खन निकालूंगी कृष्ण के लिए, क्योंकि ये गोपियां स्वयं निकालती हैं, उसमें उनका प्रेम और भाव जुड़ा हुआ है, इसलिए कृष्ण वहां पे जाता है, कृष्ण वहां पे मक्खन चोरी करने के लिए जाता है। तो इसलिए मैया ने स्वयं मक्खन निकालना प्रारंभ किया, मक्खन निकालना प्रारंभ किया, जो कि हमने सुना लीलाओं को कि किस प्रकार से वो मंथन दधी मंथन कर रही है, इस प्रकार से ये सब जो भी लीला है। तो इस प्रकार से ये जो भगवान की लीलाएं जो है ना अनंत है, बड़ी बड़ी मोहन मोहक लीलाएं है, मोहित करने वाली है, इतने आनंद को प्रदान करने वाली है, और वास्तव में यही जो है ना आत्मा का भोजन है। हम परम आनंदित होते हैं, और यही भोजन जब हमको इस कथा के रूप में प्राप्त होता है ना, हमको सुख और आनंद प्राप्त होने लगता है, सुख और आनंद प्राप्त होने लगता है। तो ये जो लीला है भगवान की, जो कि मन को मोहित करने वाली, इसी लीला को जो कि भक्तों के मन को रमन करने वाली है, जो ये लीला भगवान की, इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो सत्यव्रत मुनि ने अष्टकम का 3रा श्लोक लिखा, क्या कहते हैं, इति दिक्ष्व लीलाभे रानंद कुंडे स्वगो समनिमाञ्जन्त माख्यपयन्तम् तदीय सुतगेषु भक्तेजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तम् सतावृत्तिवन्दे।
इसी को, ये सारे जो लीलाएं भगवान की इतनी मधुर मधुर हैं कि जो सत्यव्रत मुनि इस अष्टकम के इस तीसरे श्लोक में क्या लिखते हैं, जो इस प्रकार की बाल लीलाओं द्वारा गोकुल वासियों को परम आनंद में डुबो देते हैं, भगवान परम आनंद में डुबो देते हैं, आनंद के सरोवर में वो डुबो देते हैं, और जो ऐश्वर्य ज्ञानी भक्तों के समक्ष यह उजागर करके कि मैं ऐश्वर्यहीन, मैं प्रेम का भूखा हूँ, ऐश्वर्य का भूखा नहीं हूँ, ये जागृत करते मेरे को प्रेम चाहिए, तुम्हारा धन नहीं चाहिए, इसलिए भगवान भगवद गीता में बताया है हमको बड़े बड़े भोग नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े चीजें हमको ला के ऑफर करो, बड़ा बड़ा एक्सपेंसेस करो, बड़े बड़े पैसे खर्चा करो, हम उसके भूखे नहीं है। भगवान भगवद गीता में बता दिया हम किसके भूखे हैं, वो बताए हमको क्या देना भी हो भी। कोई हो सकता बोल सकता हम गरीब है, हम कहाँ भगवान की सेवा कर पाएंगे, नहीं, भगवान की सेवा हर एक व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि भगवान की सेवा कैसे करना भगवान स्वयं गीता में बता चुके हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चार चीज। अब बताइए कि कोई भी गरीब होगा उसके पास ये चार चीज नहीं होगा, पत्रम तुलसी पत्ता, पत्रम पुष्पम फूल, कहीं भी रास्ते में चल के वो तोड़ सकता है फूल को, है ना, पत्रम पुष्पम फलम फल और तोयम जल। भगवान बोले मुझे यही चार चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा 56 भोग नहीं चाहिए मुझे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयसति। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, भक्ति से चाहिए, प्रेम से चाहिए, और मैं उसको ग्रहण करता हूं। और जो 56 भोग लगाने वाले अगर उसमें प्रेम नहीं है तो मैं उसको ग्रहण कभी भी नहीं करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को 56 भोग न लगाया जाए, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, और यही बात इस अष्टकम में सत्यव्रत मुनि लिखते हैं कि भगवान ऐश्वर्य यह दिखाना चाहते हैं अपने इस लीला से, इस बाल लीला से यह दिखाना चाहते हैं कि वह प्रेम के भूखे हैं, ऐश्वर्य के भूखे नहीं है। और ऐसे दामोदर को जिनको प्रेम और भक्ति के द्वारा तदी येसु तज्ञेशु भक्तर जितत्वम, उनको कैसे जीता जा सकता है, प्रेम और भक्ते जितत्वम, उनको भक्ति से ऐसे दामोदर को जीता जा सकता है। ऐसे दामोदर को मैं बारंबार प्रेम पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ, ये आज का तीसरा। तो अभी इस प्रकार से सुंदर तरीके से सत्यव्रत मुनि ये अष्टकम को लिखते हैं, और फिर उसके बाद अभी हम ये चौथा श्लोक है अष्टकम का, उसको हम अभी कल श्रवण करेंगे, दामोदर लीला एपिसोड 4, आज तीसरा हो गया, और कल श्रवण करेंगे, ठीक है। तो अभी हम भूल गए, वो अभी उस लीला में डूब गए थे ना, इसलिए ध्यान आया। तो आइए हम अष्टकम का पाठ करते हैं, फिर उसके बाद दीपदान करते हैं। आप प्रोजे वो दिया को जला दीजिए सभी, ये वाला जो है ना इसको जला दीजिए, और हाँ स्टैंड पे वो सब जो भी है आपको अगरबत्ती वो सब जला दीजिए अभी से। हाँ हाँ जी 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 पक्का। तो सर क्या ईशा, क्या ईशा, ईशा गाएगी, उर्वी तुम गाएगी, संस्कृत का है, संस्कृत है, अभी प्रैक्टिस करो ना यार, कोई तो मेरा मदद करो। मेरा गधे की तरह आवाज है, तुम लोग का अच्छा आवाज है, लोगों को अच्छा लगेगा सुनने में, है ना, प्रैक्टिस करो गाने की, कोई आसान है यार एकदम, क्या है सुनते ज्यादा, जितना सुनोगे वो याद हो जाएगा, इसलिए सुनोगे ना, जितना ज्यादा घर में बजाओगे सुनोगे ना वो ऐसे ही याद हो जाएगा, उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सुबह लगाते हैं, सुनो ध्यान से तो हो जाएगा यार। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय। नमामि स्वरम सच्चिदानन्द रूपम लसत् कुण्डलं गोकुले
विराजमान सच्चिदानन्द रूपम् सत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानम् यशोदा विलोकलाजवमानम् परामिषमात्यन्ततो धृतगोप्या नावियोलोकलादवमानम् परामिषमात्यन्त रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रिजन्तम् कराम्बुजयुग्मेन साशङ्कनेत्रजन्तम् कराम्बुजयुग्मेन साशङ्कनेत्रम् मो स्वास्कं पात्रेरेकान्तकण्ठ सुतद्रैव दामोदरं भक्तिवद स्वास्कं पात्रेरेकान्तकण्ठ दामोदरं भक्तिवद विश्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वगोष्ठं निमाञ्जन्तमाख्यभयन्त लीलाभिरानन्दकुण्डे स्वगोष्ठं निमाञ्जन्तमाख्यभयन्त तदीये श्रुतागेषु भक्तजितत्वम् पुनः प्रेमातस्तं सता वृत्तिवन्दे तदीये श्रुतागेषु भक्तजितत्वम् पुनः प्रेमातस्तं सता वृत्तिवन्दे वरं देवा मोक्षं न मोक्षवदिम्बा नचान्यम्रेणेऽहं वरे सादपिह वरं देवा मोक्षवदिम्बा नचान्यम्रेणेऽहं वरे सादपिह इदं देव पूर्णात गोपालबालम् सदा मे मानस्याभिरास्तं किमन्ये ते मोखाम्बोजमस्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तस्य गोप्या नीले कुन्तले स्निग्धरक्तस्य गोप्या भो शुम्भितं बिम्बरक्तदरम्भे मनस्य विरासमलं लच्छलावे बिम्बरक्तदरम्भे मनस्य विरासमलं लच्छलावे नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमग्नम् देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमग्नम् कृपा दृष्टि विचाते दिनं वतानु हरे समामे ज्ञामे दशि देशते दिनं बतानु हरे समामे ज्ञामे दशि देशेरात्मजवत मुर्देव त्वया मुचितो भक्ति भाज कृत च आत्मजवद्ध या मुचिता भक्ति भज कृत तथा प्रेम भक्ति सकमे प्रयत नमो शीघ्रे हो मे स्थिरामोदरे प्रेम भक्ति सकमे प्रयत शीघ्रे हो मे स्थिरामोदरे नमस्ते स्तो धामने स्फुरदीप्ति धामे हरियोदरायात विश्वस धामे हरियोदरायात विश्वस धामे नमो राधिकाये त्वदीय प्रियारे नमो नन्द लीलाय देवाय तुभ्यम् राधिकाये नमो नन्द लीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाये त्वदीय प्रियारे नमो नन्द लीलाय देवाय तुभ्यम् प्रियारे नमो नन्द लीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
लाइट बंद करो लाइट बंद करो
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
पंखा बंद कर दो पंखा भी बंद कर दो सबको दीपदान कराओ सबको दीजिए दीपदान पंखा बंद कर दीजिए
हरे राम
लाइट भी बंद करो
राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
करिए करिए सब लोग दीपदान करिए
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राधा दामोदर की जय श्री राधा मोदर की जय श्री राधा माधव की जय आज के आनंद की जय आप सभी भक्त वृंद की जय हरे कृष्णा।